धवला पुस्तक 11वी लेक्चर नंबर 2
ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य
ओम नमः सिद्धेभ्य ओम शुद्धात्मने नमः नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं
नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहूणं कम्मट्ठजनियमेयण वहिसमत्तिन्नये जिनेनमिं वेणमहाहियारं
आचार्य श्री बीरसेन स्वामी रचित यह धवला नामक टीका है जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबली आचार्य। इसमें यह चौथा खंड चल रहा है वेदना नामक और इस 11वीं पुस्तक का यहाँ अभी पहला जो विषय है यहाँ वेदना का क्षेत्र विधान उसका अनुयोग द्वार। हाँ वेदना कर्म को कहते हैं।
वेदना कर्म को कहते हैं
हाँ।
तो ऐसे तो अपने को ये आठ कर्म है
उसी को वेदना कहा।
अच्छा आठों कर्म
आठों ही कर्मों को मिलकर वेदना कहा। उसमें से एक एक कर्म की बात अभी चल रही है। पहले ज्ञानावरण पर लगाएंगे बाद में कहेंगे सभी में ऐसा ही जानू उसका अपना अपना जो कुछ है। हाँ असंख्यात प्रदेश में फैले है परंतु जीव की अवगाहना छोटी बड़ी होती है ना तो उसके एक जीव की अपेक्षा तो है नाना जीवों की अपेक्षा पूरे लोक में है। असंख्यात प्रदेश है परंतु उसमें छोटी बड़ी है कि नहीं उसमें उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट कहेंगे कि नहीं छोटा असंख्यात बड़ा असंख्यात क्योंकि निगोद की अवगाहना कितनी छोटी है अंगुल का असंख्यात अभाव और फिर वो महामत्स्य की अवगाहना कितनी बड़ी है वो उसकी स्वस्थान वाली फिर वो समुद्रघात करेगा तो और बड़ी हो जाती है इसलिए उसमें वो क्षेत्र छोटा बड़ा होगा। तो अभी हम ये ज्ञानावरण पर लगा रहे थे हाँ पेज नंबर 8 पर आए थे हम। प्रश्न क्या पूछा गया था ये यहाँ तो पहले सूत्र में तो कहा था कि ये क्षेत्र विधान अनुयोग द्वार है उसमें तीन और अनुयोग द्वार होते हैं पदमीमांसा स्वामित्व और अल्पभूत्व। पदमीमांसा पद का अर्थ होता है वो उत्कृष्ट है अनुत्कृष्ट है जघन्य अजघन्य उसको पद कहते हैं। ये तो चार तो पद है ही है और भी पद बताए उन्होंने सादि अनादि ध्रुव अध्रुव आदि और फिर उसको वो सम संख्या है के विषम संख्या ओज है के युग्म है फिर वो नोम है के विशिष्ट है उसकी बात उन्होंने 13 प्रश्न इसमें से निकाले थे। अब
ये सम और विषम और युग्म और ओज
ओज यानी विषम युग्म यानी सम युग्म यानी जोड़ी ना सम निशेष पण युग में भी दो प्रकार है ना चार से निशेष भाग जाता है उकृत युग्म एक बादर युग्म दो से भाग जाता है यानी दो रहते हैं बैलेंस रहते हैं। तो पहले तो 13 प्रश्न पूछे वो एक सूत्र हुआ। अब दूसरे सूत्र में क्या पूछा था अभी उसमें जो 13 अलग अलग प्रश्न पूछे थे ना उसमें से पहला पद क्या था तो ज्ञानावरण की उत्कृष्ट वेदना। अब वो उत्कृष्ट पर फिर 13 प्रश्न पूछो कैसे कि ज्ञानावरण की उत्कृष्ट वेदना क्या उत्कृष्ट होती है तो कहते हाँ उत्कृष्ट होती है अनुत्कृष्ट नहीं होती जघन्य नहीं होती पर अजघन्य होगी क्योंकि जो उत्कृष्ट है वो अजघन्य भी कहलाएगा। इस तरह से एक एक पर सभी प्रश्नों के उत्तर फिर पूछे वो दूसरा हुआ। फिर तीसरे में वो क्या वो अनुत्कृष्ट अनुत्कृष्ट है वो क्या उत्कृष्ट होती है वो क्या अनुत्कृष्ट होती है इस तरह से सब में प्रश्न पूछना ऐसे 13×13 हो जाएंगे। इस तरह से वो तो 169 हो जाए 169 13 का वर्ग हो जाता है ना 13×13। तो हमने इस पर कल वो हमने 5 सूत्र देखे थे 6 देखे थे एक्चुअली क्योंकि शादी भी देखा था उसे भी सातवां नंबर देखना है, पेज नंबर 8 पर, कि वहां पूछा गया था अनादि ज्ञानावरण वेदना। अभी उसमें प्रश्न पूछो, वो डायरेक्ट उत्तर बता रहे, जो अनादि है वो कैसे कैसे हो सकती है, तो कथनचित उत्कृष्ट, कथनचित अनुत्कृष्ट, कथनचित जघन्य, कथनचित अजघन्य और कथनचित सादिक भी है। तो प्रश्न यही है, अनादि को सादि कैसे कह सकते। समाधान नहीं, क्योंकि सामान्य की अपेक्षा वेदना के अनादि होने पर भी, यानी वो ज्ञानावरण अनादि से है, सामान्य से भी वेदना अनादि से है, परंतु उसका पर्टिकुलर पद उत्कृष्ट है वो सादिक हो सकता है ना,
चारों सादिक हो
जाए। पद यानी हम देखें उत्कृष्ट ज्ञानावरण की वेदना, यानी वो जब वो समुद्घात कर रहा है वैसे वैसे। तो कहते कि सामान्य की अपेक्षा वेदना के अनादि होने पर भी, यानी ज्ञानावरण वेदना कब से, तो अनादि से है, उत्कृष्ट आदि पद विशेषों की अपेक्षा उसके सादि होने में कोई विरोध नहीं है, यानी वो पद सादि है, पहले उत्कृष्ट नहीं था, पद सादि है, ज्ञानावरण सादि नहीं है, वो पद सादि है।
सूक्ष्म में जीव जो जन्म लेता है वो तीन नीचे के सवनन वाले ले सकते हैं ना। सूक्ष्म
आपका प्रश्न है, सूक्ष्म जीवों में जो जन्म लेते हैं तीन नीचे के तीन के सर, ऐसा प्रश्न क्यों आया आपको?
नहीं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ने उत्कृष्ट के लिए खाली 6-7 राजू लिया।
क्या क्या क्या?
समुद्घात में हमने 7 राजू लिया,
समुद्घात में 7 राजू। हाँ,
तो वो हम नीचे के नरक की अपेक्षा लिया। अभी सूक्ष्म में वो जन्म लेता है तो वो तो लोक में पूरा लोक पे फैल जाता है। ये कल मेरे को पूछना आया था तो,
यानी आपने ऐसा, आपका प्रश्न मुझे लगता है, हाँ। आपने आगे पढ़ा कि नहीं पढ़ा? पुस्तक नहीं, नहीं पढ़ी। अच्छा, कि उसके नरक में उत्पन्न करने के बदले सूक्ष्म एक इंद्रिय में कोने वाले में नीचे के लोकाकाश के कोने में खड़ा, यानी उत्पन्न करते तो और एक राजू नीचे तक चला जाता। ये प्रश्न पूछ रहे
हैं ना सूक्ष्म में।
हाँ, बढ़ती है, परंतु वो वेदना करके सूक्ष्म निगोद में क्यों नहीं उत्पन्न किया, इनका प्रश्न है। उसका उत्तर आएगा, क्योंकि स्वयं आचार्य भी पूछ रहे हैं कि ऐसा क्यों नहीं किया, तो थोड़ी शांति रखेंगे तो उसका प्रश्न और उत्तर मिलेगा। बहुत अशांति होती है तो पढ़ लेना। बादर युग्म, युग्म का अर्थ है सम संख्या। कृत युग्म का अर्थ क्या है? 4 से भाग देते हैं तो निशेष भाग जाता है, और बादर युग्म में 2 बाकी है, जैसे 14 संख्या है, हमने 4 से भाग दिया, 4 × 12 और 2 शेष रहे, इस तरह से। अभी हम पेज नंबर 8 पर आ रहे हैं। यहाँ तो 5 पद बताए ना, जो अनादि ज्ञानावरण वेदना, कथनचित उत्कृष्ट, कथनचित अनुत्कृष्ट, कथनचित जघन्य, कथनचित अजघन्य, कथनचित सादिक भी है, उसकी चर्चा की। अब नीचे आना, 6, कथनचित वह वेदना ध्रुव है। कौन सी? अनादि वाली ध्रुव है, क्योंकि सामान्य का कभी विनाश नहीं होता, सामान्य की अपेक्षा उसको ध्रुव कहेंगे। और कथनचित अध्रुव भी है, क्योंकि पद विशेष का विनाश देखा जाता है, यानी कोई पर्टिकुलर उत्कृष्ट 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 ध्रुव नहीं रह सकती, तो पद विशेष की अपेक्षा अध्रुव है। ये पदों में ही लगा रहे शंका, सामान्य विवक्षा से अनादित्व के होने पर पद विशेष की संभावना ही कैसे हो सकती है, यानी वो सामान्य की अपेक्षा उसको अनादि कह दिया, फिर अभी पद विशेष क्यों लगाते बीच में? समाधान, नहीं, क्योंकि अपने भीतर समस्त विशेषों को रखने वाले सामान्य की विवक्षा होने पर उसमें कोई विरोध नहीं है। सामान्य किसको कहते हैं? जिसमें सारे विशेष गर्भित है उसको सामान्य कहते हैं। इसलिए सामान्य से अनादि कहने पर भी किसी विशिष्ट पद की अपेक्षा से उसको हम ये अनादि होने पर भी सादि कह सकते हैं उसको। अब आगे वाला वो ध्रुव अध्रुव बात हो गई। अभी 8 नंबर, कथनचित वह ओज, कथनचित युग्म, क्योंकि सभी चारों भी पद लिए थे ना, अनादि वाली, उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, जघन्य, अजघन्य सब बताए थे, तो वो कथनचित ओज भी हो सकते, कथनचित युग्म, कथनचित ओम, कथनचित विशिष्ट, कथनचित नोम नो विशिष्ट भी है, यानी उतना का उतना भी रह सकता है थोड़ी समय के लिए, इसलिए नोम नो विशिष्ट, यानी हानि वृद्धि वाली नहीं कहना, कोई पद विशेष कहेंगे तो उसमें हानि वृद्धि नहीं होती है, या उत्कृष्ट और जघन्य में नोम नो विशिष्ट कहते हैं, उस अपेक्षा से भी घटित होता है। इस प्रकार अनादि वेदना के 12 या 13 भंग होते हैं, यह सातवें सूत्र का अर्थ है। यह अनादि वेदना अनादि है ये कहना तो एक्स्ट्रा एक सूत्र बन जाएगा, इसलिए उसको छोड़कर 12 होते हैं, उसको पकड़ के 13 होते हैं। सातवां है वो बीच में जो ध्रुव और अध्रुव एक लाइन में है, देखो हाँ, छठी छठा लेना, ध्रुव के लिए छठा दिया, उसी लाइन में कथनचित अध्रुव भी है। अभी हम 8 नंबर का सूत्र लगाएंगे यहाँ पर। अभी ये जो ध्रुव ज्ञानावरणीय वेदने के ऊपर सब प्रश्न करेंगे, ये जो ध्रुव वाली है वो उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट वो पूछेंगे, अभी उसका उत्तर भी देंगे। ध्रुव ज्ञानावरणीय वेदना कथनचित उत्कृष्ट, कथनचित अनुत्कृष्ट, कथनचित जघन्य, कथनचित अजघन्य, कथनचित सादि, कथनचित अनादि, कथनचित अध्रुव। अभी जैसे ध्रुव जो कहा सामान्य की अपेक्षा, फिर विशेष की अपेक्षा, जो वहां पर लगाए थे वैसे यहाँ पर भी लगाना है। कथनचित ओज, कथनचित युग्म, कथनचित ओम, कथनचित विशिष्ट, कथनचित नोम नो विशिष्ट भी है। जैसे अनादि पर हमने 12 या 13 लगाए थे, ऐसा यहाँ पर भी। इस प्रकार ध्रुव पद के 12 अथवा 13 भंग होते हैं, यह 8वें सूत्र का अर्थ है। अब 9वां सूत्र, हमने लैटिन में उसको नंबरिंग किया था, अध्रुव हाँ, ओम यानी वो घटकर हानि होना, हानि होकर वो पद आया है तो उसको कहेंगे ओम, और विशिष्ट यानी वृद्धि होकर वो पद आता है तो उसको कहते हैं विशिष्ट। देखो देखो ये फिर हम अर्थ देखते हैं, क्योंकि बारंबार आने वाले शब्द है ना। ये पेज नंबर 5 पर है, वो ऊपर का जो बड़ा पैराग्राफ है ना, उसमें नीचे से तीसरी लाइन, जिसको हमने 11 नंबर दिया था, कथनचित वह ओम है क्योंकि किसी क्षेत्र विशेष में हानि देखी जाती है, और विशिष्ट किसको कहना, कहीं पर वृद्धि देखी जाती है, और नोम नो विशिष्ट किसको कहना, वृद्धि और हानि के बिना क्षेत्र का अवस्थान देखा जाता है, वैसा का वैसा। अब यहाँ हम 9वां सूत्र देख रहे हैं, अध्रुव की बात है। हाँ दोनों ही विषम है। हाँ एक रहेगा, जैसे फॉर एग्जांपल 13 संख्या अध्रुव, हाँ 13 और 15, अध्रुव ज्ञानावरणीय वेदना कथनचित उत्कृष्ट, कथनचित अनुत्कृष्ट, कथनचित जघन्य, कथनचित अजघन्य, कथनचित सादी, कथनचित ओज, कथनचित युग्म, कथनचित ओम, कथनचित विशिष्ट, और कथनचित नोम नो विशिष्ट भी है। इस प्रकार अध्रुव पद के 10 अथवा 11 भंग होते हैं। वहां ध्रुव में क्या था कि सामान्य की अपेक्षा अनादि भी कहा था, परंतु यहाँ केवल सादि लिया, अनादि वाला नहीं लिया, क्योंकि वहां सामान्य की अपेक्षा अनादि का हो सकता है ध्रुव, ऐसे यहाँ सामान्य की अपेक्षा अध्रुव कैसे होगी, ये पद की विशेष पद की अपेक्षा ही वो अध्रुव होगा, सामान्य की अपेक्षा अध्रुव नहीं होगा। देखो जैसे पेज नंबर 8 पर देखो, जो हमने कल देखा था सादी ज्ञानावरणी वाला था ना, उसमें 10 या 11 भंग लगाए थे, ऐसे इसमें भी अध्रुव में भी 10 या 11 लगाए, अनादि में और ध्रुव में 12-13 लगाए। अब नीचे आते हैं 10 नंबर का अपना सूत्र, जिसमें ओज ज्ञानावरणी वेदना उत्कृष्ट और जघन्य पदों में नहीं होती, क्योंकि हमने देखा था उत्कृष्ट जो उसके एरिया है और जो जो जघन्य है तो वो तो कृतयुग्म राशि आती है, उसकी जो एरिया है वो कृतयुग्म राशि है, यानी वो असंख्यात का जो प्रमाण है वो कृतयुग्म में आता है, इसलिए वो ओज वाली जो है उसको क्या कहेंगे, कथनचित अनुत्कृष्ट कथनचित अजघन्य, वह कथनचित सादी है, वह कथनचित अनादि भी है क्योंकि सामान्य की विवक्षा है, कथनचित वह ध्रुव भी है क्योंकि उसी सामान्य की ही विवक्षा है, कथनचित वह विशेष की विवक्षा से अध्रुव भी है। अब शंकाकार पूछते हैं द्रव्य विधान में, द्रव्य विधान ने अभी तो हमारा क्षेत्र विधान चल रहा है, हमने 10वीं पुस्तक में द्रव्य विधान देखा था, वहां परमाणु की संख्या की बात थी, वहां अनादि और ध्रुव पदों की प्ररूपना क्यों नहीं की गई है, क्योंकि उसमें तो जो संख्या होती ना तो उसमें तो केवल हमने वो कौन सी राशि है, युग्म है के बादर युग्म वगैरह उसकी बात की थी, तो उसमें अनादि और ध्रुव क्यों नहीं कहा गया था, उसका समाधान नहीं, क्योंकि वहां सामान्य की विवक्षा का अभाव है, यदि सामान्य की विवक्षा अभिष्ट हो तो वहां भी इन दो पदों को कहना चाहिए, क्योंकि वहां विशेष की अपेक्षा ही विचार किया था इसलिए वो दो पदों की बात वहां नहीं ली थी। अब 6 तो पॉइंट देखे थे ना हमने, देखो देखो ओज की बात चल रही है, ओज में अनुत्कृष्ट और अजघन्य लिया, फिर सादी अनादि लिया, ध्रुव और अध्रुव भी लिया, अब यहाँ कहते हैं 10 नंबर के पुष्प पर वह कथनचित ओम कथनचित विशिष्ट और कथनचित नोम नो विशिष्ट भी है, इस प्रकार ओज पद के 9 भंग अथवा 10 भंग होते हैं, यह 10वें सूत्र का अर्थ है। अब युग्म पर लगाएंगे, युग्म ज्ञान ये सूत्र नंबर 11वां हो रहा है, हमने लास्ट टाइम नंबर किए थे, आप नए पुस्तकों में डाल सकते हैं। युग्म ज्ञानावरणीय वेदना कथनचित उत्कृष्ट कथनचित अनुत्कृष्ट, क्योंकि अनुत्कृष्ट में भी सम संख्या तो हो ही सकती है, उत्कृष्ट तो सम ही है कृतयुग्म ही है, परंतु अनुत्कृष्ट में भी हो सकती है, उसमें कोई निषेध तो नहीं है। कथनचित जघन्य कथनचित अजघन्य कथनचित सादी कथनचित अनादि कथनचित ध्रुव कथनचित अध्रुव कथनचित ओम कथनचित विशिष्ट और कथनचित नोम नो विशिष्ट भी है, क्योंकि वो अजघन्य अनुत्कृष्ट में भी उसके पद बनते हैं युग्म राशि के, इसलिए इस प्रकार युग्म पद के 11 अथवा 12 भंग होते हैं, यह 11वें सूत्र का अर्थ है। देखो ओज में तो उत्कृष्ट और जघन्य को छोड़ दिया था, इसमें तो सभी चारों को ले लिया, इसलिए यहाँ 2 पद एक्स्ट्रा हुए, वहां 9 और 10 थे, यहाँ 11 या 12 है। अब सूत्र नंबर 12 लैटिन में 12 नंबर डालो, ओम ज्ञानावरणीय वेदना, ओम का अर्थ क्या कहा था हमने, वो हीन होना, हीन होकर कम होकर वो उत्पन्न हुआ है, तो कथनचित अनुत्कृष्ट कथनचित अजघन्य वह कथनचित सादी भी है, वह कथनचित अनादि भी है, क्योंकि ओमत्व सामान्य की विवक्षा है, सामान्यपने हीन हुआ बस इतना ही लेना है, इसी कारण से वह कथनचित ध्रुव भी है कथनचित अध्रुव भी है।
ये ओम की अपेक्षा ये अनादि पद लिया ना, वो नहीं समझ में आया, क्योंकि
सामान्य है, सामान्य से वो हानि होकर होते हानि होती रहती है, इसलिए अनादि
से हानि होती रहती है,
ऐसा नहीं है, अनादि से ओमत्व सामान्य की अपेक्षा विवक्षा है, यानी वो तो हानि तो चलती रहती है, हानि और वृद्धि तो होता रहता है क्षेत्र में,
तो हानि और वृद्धि होती रहती है, तो इसको अनादि कैसे कहा?
इसीलिए सामान्य से बताया ना, वृद्धि होकर वो उत्पन्न हुआ है, अनादि यानी कोई बिगिनिंग तो है ही नहीं है, बिगिनिंग कहेंगे तो उसको कहेंगे, ऐसा नहीं, नहीं होती रहती है, बस इतना ही। ये उध्रुव अध्रुव हो गया। सामान्य की विवक्षा न होने से द्रव्य विधान में ओम में बराबर करो, ओम के अनादि व ध्रुवपद नहीं कहे गए, यानी वो जो द्रव्य विधान है परमाणु की संख्या की बात थी, वहां सामान्य की विवक्षा नहीं ली थी हमने, सब विशेष की ही विवक्षा की थी, इसलिए वहां उसको अनादि और ध्रुवपद नहीं कहे गए थे। वो कथनचित ओज और कथनचित युग्म भी है। इस प्रकार ओम पद के चाहिए, ओम के आठ पद के नहीं, ओम पद के आठ अथवा नौ भंग होते हैं। ओम के बाद वो के है ना, वो निकालो और आठ भी निकाल दो, ऐसा पढ़ेंगे, ओम पद के आठ अथवा नौ भंग होते हैं, यह बारहवें सूत्र का अर्थ है। अब तेरहवां सूत्र, विशिष्ट ज्ञानावरणीय वेदना। विशिष्ट है नहीं, वो तो वृद्धि वाल, कथनचित अनुत्कृष्ट, कथनचित अजघन्य, कथनचित सादी, कथनचित अनादि, कथनचित ध्रुव, कथनचित अध्रुव, कथनचित ओज और कथनचित युग्म भी है। इस प्रकार विशिष्ट पद के आठ अथवा नौ भंग होते हैं, जैसे ओम के आठ या नौ बताए वैसे विशिष्ट के भी होते हैं, यह तेरहवें सूत्र का अर्थ है। चौदहवां सूत्र भी बनाए उन्होंने, ओम नौ विशिष्ट ज्ञानावरणीय वेदना, कथनचित उत्कृष्ट, कथनचित अनुत्कृष्ट, कथनचित जघन्य, कथनचित अजघन्य, चारों लिए उसमें, नोम नो विशिष्ट दोनों लिए। कथनचित सादी भी है, वह कथनचित अनादि भी है, क्योंकि नोम नो विशिष्ट सामान्य की विवक्षा है, इसी कारण से वह कथनचित ध्रुव भी है, वह कथनचित अध्रुव। देखो सामान्य की तो ध्रुव अनादि सब उसमें लगेंगे, और जब विशिष्ट पद की बात करते हैं तो अध्रुव, कथनचित ओज और कथनचित युग्म भी है। देखो देखो सामान्य तो सब सब जगह लगेगा, हाँ, केवल वो सामान्य की विवक्षा वैसे तो सब जगह लिए, उत्कृष्ट में नहीं ली थी पहला, देखो उत्कृष्ट बात ली थी, उसमें लिए पहला जो हमने देखा सूत्र नंबर दो देखा था, देखो उत्कृष्ट पद सर्वदा नहीं है, इसलिए सादी लिया था, अजघन्य लिया था, तो उसमें अनादि वाली बात नहीं ली थी, यानी उत्कृष्ट और जघन्य वो तो अलग लिए थे, उसमें पांच पांच पद लिए थे, बाकी में तो लगाए थे उन्होंने, जैसे हमने देखा ना कि अनुत्कृष्ट सामान्य हो भी हो सकता है, जैसे हमने बताया कि एक ये जघन्य है, सौ ये उत्कृष्ट है, और बीच वाले कैसे है अनुत्कृष्ट जघन्य, तो सामान्य अनुत्कृष्ट अनादि से कहला है, उन विशिष्ट पद अगर है तो वो सादी कहेगा, ये जो वो पद की अपेक्षा देखते हैं उसमें, जैसे अनुत्कृष्ट और जघन्य में हीना दिखता तो होकर ही वो पद उत्पन्न होता है, परंतु उत्कृष्ट और जघन्य वो तो फिक्स पद है, तो उसमें हीन हानि वृद्धि की बात नहीं कहेंगे, तो जहां सामान्य से हानि वृद्धि हो सकती है अन्य पद में जो अजघन्य अनुत्कृष्टों में, वहां तो सामान्य पद लग सकता है, तो वहां सामान्य की विवक्षा लगा सकते हैं, और फिर उसमें ही विशिष्ट पद होगा, तो उसमें वो उसकी अपेक्षा से वो अध्रुव या सादी वो बात उसमें हो सकती है। इसी कारण कथनचित ध्रुव भी है सामान्य की अपेक्षा, कथनचित अध्रुव, कथनचित ओज और कथनचित युग्म भी है। इस प्रकार नोम नो विशिष्ट पद के 10 भंग अथवा 11 भंग होते हैं, वह 14वें सूत्र का अर्थ है। इन भंगों का अंक विन्यास इस प्रकार है, यानी वो हमने जो 14 सूत्र देखे थे उसमें पहले में तो 13, क्योंकि 13 प्रश्न पूछे गए थे और बस है इतना कहा था। फिर 5 किसमें लगाए थे? उत्कृष्ट में। अनुत्कृष्ट में 9 लगाए थे। जघन्य में 5 लगाए थे। अजघन्य में 9 लगाए थे। 10वें यानी वो तो सादी लगाया था, उसमें 10 थे। और अनादि में 12 हो गए। इसमें और एक 12 ऐड करो, क्योंकि ध्रुव में भी 12 थे। एक 12 उसमें 12 एक बार है कि दो बार है? हाँ, तो उसमें और एक 12 ऐड करो। 12 के बाद और एक 12 चाहिए? नहीं नहीं, 12 और 10 के बीच में, नेक्स्ट वाले 10 के बीच। पहले एक 12 होने के बाद दूसरा 12 डालो। आपने लास्ट टाइम डाला होगा? हाँ, गड़बड़ हो गई। अच्छा, यानी शादी भी सॉरी अनादि भी 12 देखे थे, ध्रुव भी 12 देखे थे, फिर 10 और ध्रुव के 10 देखे थे, उसके बाद 9 ओज के 9 लिए थे, युग्म के 11 देखे थे। हाँ, क्योंकि उसमें उत्कृष्ट और जघन्य 2 ऐड हुए थे। वो 10 का 11 करो, 10 लिखा है ना बेन, उसका 11 कर दो, उसमें शायद होगा, हाँ करेक्शन होगा। उसके बाद ओम वाली बात है तो 8 थे, और विशिष्ट में भी 8 थे, और नोम नो विशिष्ट में 10 थे। इसलिए टोटल जो 131 है, यानी कितने है उसकी बात है। प्रश्न कितने होते हैं तो 169 होते हैं, उसमें से क्या क्या है उसकी बात केवल उन्होंने बता दी। अकृत एवं सत्तन्नम कम्माणम, ज्ञानावरणी पर बताया उन्होंने, तो सातों कर्मों की बात ये बात लागू होगी। सात नहीं, किसी को जिसको कहेंगे कि कोई उत्तर प्रकृति की बात नहीं, सामान्य से जो 8 प्रकृतियां होती, 8 कर्म होते हैं उसमें उसकी बात है। तो इसी प्रकार 7 कर्मों की पद मीमांसा संबंधी प्ररूपणा करना चाहिए। कौन कौन से? जैसे ज्ञानावरण की बात हो गई, अब दर्शनावरण पर लगाओ, उसमें भी ये 13 प्रश्न पूछेंगे। दर्शनावरण का उत्कृष्ट है क्या, अनुत्कृष्ट है, किसको अभी स्वामित्व तो नहीं बताया, परंतु ये पद बताए, केवल पद मीमांसा बात चल रही, स्वामित्व की बात बाद में आ जाएगी। जिस प्रकार ज्ञानावरणीय की पद मीमांसा की है, उसी प्रकार शेष 7 कर्मों की पद मीमांसा करना चाहिए। इस प्रकार ओजान योग द्वार गर्भित पद मीमांसा समाप्त हुई। ओजान योग, आयु कर्म जो है ना, वहाँ तो आयु तो वर्तमान की जो भुजमान तो है ही है, और जहाँ मारणांतिक हो रहा है वहाँ तो बद्यमान भी पड़ी है, परंतु एक विशिष्ट आयु की बात नहीं लेना है। मैंने इसीलिए कहा उत्तर प्रकृति के मत लेना, क्योंकि देवायु के साथ वो उत्कृष्ट क्षेत्र नहीं होगा ना। देवायु का उत्कृष्ट क्षेत्र जो देव में से जो कुछ मारणांतिक या देव में मारणांतिक करने वाले की होगी, दोनों ओर से, उसकी बात यहाँ नहीं है, मूल प्रकृति की बात है। हाँ, प्राकृत में वहाँ ऊपर भी 12 डालो, 11 का 10 का 11 करो, और 8 3 बार आया उसमें से 1 8 निकालो। देखो फिर से मैं प्राकृत के बाद पढ़ती, 13 5 मिला, 9 फिर 5 फिर 9 फिर 10 फिर 12, 12 के बाद और एक 12 डालो, फिर 10 फिर 9, वहाँ के 10 का 11 कर दो, फिर 8, फिर 8 के साथ वो जो चिन्ह बताया है वो निकाल दो पूरा, फिर 8 यानी 8 दो बार ही चाहिए, और फिर 10। लास्ट टाइम हमने किया था करेक्शन, आगे 131 नहीं लिखा है, वहाँ लिखेंगे 131। ये मन तो कितो जान योग है। ऊपर क्या एवं अंतो खेतो खितो नहीं खेतो खेतो जो अनुयोगदार पद मीमांसा समत्ता एवं अंतो खेतो जा खेतो जा उसका यह ओजान योग द्वार गर्भित कैसा ट्रांसलेशन किया
क्षेत्र द्वार पता ना
एक्चुअली उसका ऐसा ट्रांसलेशन होना चाहिए खेतोज अनुयोगद्वार
क्षेत्र अनुयोग
क्षेत्रज ठीक है उसमें कुछ नहीं गड़बड़ करना परंतु वो ओजान योग द्वार गर्भ ये बराबर नहीं होते वो क्षेत्रज अनुयोग द्वार होना चाहिए। अभी हम 6 नंबर का सूत्र पढ़ेंगे सामित्तम देखो पद इसमें हमने देखा था ना तीन तीन अनुयोग द्वार हो गए इसमें कौन से पद मीमांसा स्वामित्व और अल्पबहुत्व अब उसमें से स्वामित्व जो हमने ये पद देखे थे उत्कृष्ट है जघन्य है अजघन्य है किसके होते उसकी चर्चा करेंगे उसको कहेंगे स्वामित्व ये पद किसके होते हैं पद बताएंगे हाँ पद मीमांसा पूरी हो गई अब वो जो पद है कौन से जीवों के कहाँ पर हो सकते हैं कब हो सकते हैं उसको कहना वो है स्वामित्व। तो ये 6 नंबर का सूत्र है ना सामित्तम दुविहम जहन्न पदे उपकस्य पदे स्वामित्व दो प्रकार का है जघन्य पद रूप और उत्कृष्ट पद रूप। जघन्य पद रूप का अर्थ है जो जघन्य जो पद है वो कौन से जीव को होगा उत्कृष्ट किसके होगा उसको कहेंगे स्वामित्व। उनमें मैं हो गया उनमें जघन्य पद 4 प्रकार है नाम जघन्य वो घ बरोबर करो ध हुआ स्थापना जघन्य द्रव्य जघन्य और भाव जघन्य। जैसे हम देखते हैं ना हर विषय में ये निक्षेप लगा रहे अभी इनमें नाम जघन्य और स्थापना जघन्य सुगम है। द्रव्य जघन्य 2 प्रकार का है द्रव्य जघन्य का अर्थ होता है द्रव्य निक्षेप लगाना है हमको जघन्य में द्रव्य निक्षेप लगाना है कि आगम द्रव्य जघन्य और नो आगम द्रव्य जघन्य जैसे हमने कल आगम नो आगम के भेद देखे थे वैसा यहाँ पर है। इनमें जघन्य प्रावृत का जानकार उपयोग रहित जीव आगम द्रव्य जघन्य कहा जाता है। नो आगम द्रव्य जघन्य ने नहीं जानने वाला कौन होता है उसका शरीर है वो जीव है जो भविष्य में जानेगा और इनके दोनों नहीं ऐसा। तो ये 3 प्रकार का है ज्ञायक शरीर यानी ज्ञायक का शरीर उसमें हमने भूत वर्तमान भविष्य वाले देखे थे भावी भावी में जीव को लेना जो भविष्य में जानेगा और तद व्यतिरिक्त यानी जो शरीर भी नहीं जीव भी नहीं है अन्य जो कुछ है इनमें उपयोग नहीं है वो तो उसमें लेना आगम में लेना या नो आगम में लेना है। कभी भी हो सकता है उपयोग नहीं वो जाना ही नहीं उसने उपयोग की बात ही नहीं उसके अभी वो जानने वाला ही नहीं है वो जाके आगे चलकर उसका इस भव में हो सकता है आगे के भविष्य में हो सकता है कभी भी हो सकता है। तो हमने 3 भेद देखे ना ज्ञायक शरीर भावी और तद व्यतिरिक्त इनमें ज्ञायक शरीर और भावी अवगत है ना हमको पता है यानी इट्स नोन क्योंकि उसकी चर्चा करते हैं ना हम हमेशा ज्ञायक शरीर में नहीं जानने वाले जीव का शरीर भावी यानी वो जीव जो भविष्य में जानने वाला होने वाला है। तद व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य जघन्य 2 प्रकार का है ओग जघन्य और आदेश जघन्य। ओग यानी जनरल आदेश यानी स्पेसिफिक हम मार्गणाओं की भी बात करते हैं। इनमें ओग जघन्य द्रव्य क्षेत्र काल और भाव की अपेक्षा 4 प्रकार का है क्योंकि जघन्य किसमें लगाना है क्षेत्र में भी जघन्य होगा द्रव्य में भी काल में भी इस तरह से। उनमें द्रव्य जघन्य 1 परमाणु है ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव में ने द्रव्य में जो जघन्य कौन है 1 परमाणु है। क्षेत्र जघन्य कर्म क्षेत्र जघन्य और नो कर्म क्षेत्र जघन्य के भेद से दो प्रकार का है। कर्म क्षेत्र जने कर्म का क्षेत्र लेना है जघन्य में, तो कर्म का क्षेत्र जघन्य किसके होगा, जिसके जघन्य अवगाहना होगी उसके होगा। तो कहते हैं कि उनमें वो क्षेत्र जघन्य जो है सूक्ष्म निगो जीव की जघन्य अवगाहना कर्म क्षेत्र जघन्य है, और नो कर्म क्षेत्र जघन्य कौन है, जो कर्म नहीं है वो नो कर्म। तो कहते एक आकाश प्रदेश है जो कर्म नो कर्म, यानी वो तो नो कर्म का है, नो कर्म जो कर्म नहीं है वो बाकी सब, उसमें जो आकाश का एक प्रदेश है वो जघन्य है। एक समय काल जघन्य, हमने देखा ना द्रव्य जघन्य में एक परमाणु लिया, क्षेत्र जघन्य में कर्म क्षेत्र जघन्य निगोद की जघन्य उगाना, और नोकर्म क्षेत्र जघन्य आकाश का एक प्रदेश, काल में जघन्य एक समय है, और परमाणु में रहने वाला स्निग्धत्व आदि गुण भाव जघन्य है। यानी देखो देखो परमाणु है तो उसमें जो स्निग्धत्व का जो मिनिमम जो भाव की अपेक्षा मिनिमम यानी क्या है कि उसकी जो उसके अविभाग प्रतिच्छेद लेना है वो सबसे जघन्य वाले हैं, उसको कहेंगे भाव जघन्य। भाव में उसके गुण तो है ही है, उसके पर्याय भी लेना, जघन्य वाली पर्याय ले लेना। यहाँ तो गुण को लिया, स्निग्धत्व आदि गुण भाव जघन्य है, गुण को लिया यहाँ उन्होंने, परमाणु में लेने क्योंकि स्कंध की अपेक्षा वो जघन्य नहीं रहता, इसलिए परमाणु का गुण लिया। नहीं नहीं पर अविभाग प्रतिच्छेद की उन्होंने बात की नहीं यहाँ पर,
ये अलग अलग गुण के अलग,
क्योंकि गुण का भी वो क्षेत्र उतना ही हो जाता है ना, इसलिए उसको लिया है भाव में, गुण को लिया, एक गुण लिया,
प्रत्येक गुण की जगह,
हाँ एक एक गुण एक जघन्य हो जाएगा, भाव की अपेक्षा जघन्य एक एक गुण हो जाएगा, और वो गुण भी परमाणु का लिया है। अब आदेश जघन्य, पहले हमने क्या देखा था ओघ जघन्य, आदेश जघन्य यानी विशेष में बताने, वह भी द्रव्य क्षेत्र काल और भाव के भेद से चार प्रकार का है। उनमें द्रव्य से आदेश जघन्य को बतलाते हैं, वो इस प्रकार है, यानी इसमें आदेश में नहीं वो कंपेरेटिवली बताना है। ओघ में नहीं सब में कोई जघन्य उसको जघन्य कहा, अब आदेश में विशेष में क्या है, कंपैरिजन में जघन्य कौन सा है कहेंगे। देखो ये उदाहरण देंगे, उनमें द्रव्य से आदेश जघन्य को बतलाते हुए इस प्रकार है, तीन प्रदेश वाले स्कंध को देखकर दो प्रदेश वाला स्कंध आदेश से द्रव्य जघन्य है। हमने कहा हम दो में अगर हम ये लंबा है कि शॉर्ट है टिंगना है तो क्या कहेंगे, तो कंपेरेटिव है ना, हमारे इंडियन जो लंबा है वो अमेरिका में आने पर वो तो शॉर्ट खेलेगा, इसको कहते कंपेरेटिव। हाँ रिलेटिव टर्मिनोलॉजी है ना ये, तो अपेक्षित तो उसकी अपेक्षा से तीन वाले स्कंद की अपेक्षा से दो वाला स्कंद जो है वो आदेश द्रव्य जघन्य है। इसी प्रकार शेष स्कंदों में यानी चार प्रदेश वाले की अपेक्षा तीन प्रदेश वाला, पांच प्रदेश वाले की अपेक्षा चार प्रदेश वाला स्कंद इत्यादि भी ले जाना चाहिए। अब क्षेत्र की अपेक्षा बताएंगे, तीन प्रदेशों का अवगाहन करने वाले द्रव्य की अपेक्षा, अब अवगाहना तीन प्रदेश, आकाश के तीन प्रदेश व्यापना वाला ऐसा लेना उसका अर्थ, इसमें तीन ही परमाणु चाहिए जो जरूरी नहीं है, क्योंकि तीन परमाणु का एक प्रदेश ही स्कंद भी हो सकता है, पर यहाँ तीन प्रदेशों को अवगाहन करने वाले यानी आकाश के तीन प्रदेश व्यापने वाले। उसकी अपेक्षा दो प्रदेशों का अवगाहन करने वाला द्रव्य क्षेत्र की अपेक्षा आदेश जघन्य है, यानी भले वो अनंत परमाणु का भी स्कंध क्यों ना हो, कोई तीन प्रदेश व्याप्ता है तो कोई दो प्रदेश व्याप्ता है, तो उसको आदेश की अपेक्षा जघन्य कहेंगे। इसी प्रकार शेष प्रदेशों में भी ले जाना चाहिए। अब कहते तीन समय परिणत द्रव्य को देखकर दो समय परिणत द्रव्य आदेश से काल जघन्य है, यानी वही उसमें द्रव्य में क्षेत्र में काल में भाव में लगा ले। इसी प्रकार शेष समयों में भी ले जाना चाहिए। तीन गुण परिणत द्रव्य को देखकर दो गुण परिणत द्रव्य भाव से आदेश जघन्य है, यानी जहां तीन गुणों की बात है, यानी कोई तीन गुण वाला ही द्रव्य नहीं होता है, पर हम तीन गुणों की अपेक्षा सोचेंगे और दो गुणों की अपेक्षा सोचेंगे तो ये भाव से होगा।
गुण की परिणाम की अपेक्षा जगन्य अजगन्य हो सकता है,
उसमें तीन गुणों की बात करना है या दो गुणों की बात करना है? आप स्पर्श रसगंध और चार की बात करेंगे, केवल स्पर्श रसगंध की बात करेंगे तो चार की अपेक्षा तीन हो जाएगी। हम किसको, हाँ ओग में हम किसको सोच रहे हैं, किसकी मुख्यता से बात हो रही है, उसकी बात है यहाँ पर। अब कहते भाव जघन्य, ये तो सारा द्रव्य जघन्य हुआ था, ये आगम नो आगम और उसके इतने सारे भेद तद व्यतिरिक्त के अभी तक जो हम देखते आए थे वो द्रव्य निक्षेप लगाया था। अब भाव निक्षेप लगाना है, द्रव्य निक्षेप में जो हमने द्रव्य क्षेत्र काल भाव लगाया था वो भाव अलग है, और अभी जो भाव जघन्य आगम भाव जघन्य और नो आगम भाव जघन्य से दो प्रकार, वो निक्षेप वाला भाव कहना, भाव निक्षेप दो प्रकार का है। फिर से पढ़ते देखो, भाव जघन्य ने यह भाव निक्षेप लगाया और ऊपर जो भाव भाव शब्द आया था तो द्रव्य निक्षेप में उसकी चर्चा थी। आगम भाव जघन्य और नो आगम भाव जघन्य के भेद से दो प्रकार का है। अभी हमने आगम भाव किसको कहते हैं, वो जघन्य प्रावृत को जानने वाला, जघन्य संबंधी प्रावृत को जानने वाला, उसी में जिसका उपयोग है, उनमें जघन्य प्रावृत का जानकार उपयोग युक्त जीव आगम भाव जघन्य है। सूक्ष्म निगोध जीव लब्धि अपर्याप्त का जो सबसे जघन्य ज्ञान है वह नो आगम भाव जघन्य है। वो बीच में कोई ग या कुछ ग ऐसा शब्द आया, नो आगम भाव जघन्य इतना रखो, बीच में एक एक्स्ट्रा अक्षर आया है, ग आया है, समझ में? आगम भाव जघन्य उस जीव को लिया जो जघन्य प्रावृत का जानकार है, उसी में उपयोग वाला है। नो आगम भाव, क्योंकि भाव को लेना है, नो आगम भाव जघन्य है तो उसमें वो ज्ञान वाला जीव ने मिनिमम ज्ञान किसको होता है उसको लिया। नहीं 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 ना, भाव में लिया ना, आगम भाव जघन्य वाला जघन्य प्रावृत का जानकार उसी में उपयोग वाला, वो तो हो गया। अब नो आगम की बात, वो तो द्रव्य में लेते हैं, द्रव्य निक्षेप में लेते हैं, द्रव्य निक्षेप में आगम द्रव्य निक्षेप में उसका जानकार उसमें उपयोग रहित, और भाव निक्षेप में आगम भाव निक्षेप में हाँ उसी में उसका उपयोग है। और नो आगम भाव में क्या लिया यहाँ पर, वो जघन्य ज्ञान लिया। अब यहाँ 13 नंबर पर इतने सारे भेद प्रभेद बताए, अब कहेंगे यहाँ कौन सा क्षेत्र प्रकृत है? तो यहाँ ओघ जघन्य क्षेत्र प्रकृत है, ओघन ओघ का ना ओधन ओघ, हमने देखा था ना वो तद व्यतिरिक्त नोआगम द्रव्य जघन्य था, ओघ जघन्य और आदेश जघन्य। ओघ में हमने देखा था कि द्रव्य में एक परमाणु है, क्षेत्र में क्या क्या, कर्म क्षेत्र और नो कर्म क्षेत्र, वैसा उसकी बात है यहाँ पर, क्योंकि ज्ञानावरणीय के क्षेत्रों में सर्व जघन्य क्षेत्र का ग्रहण है। यहाँ सर्व जघन्य क्षेत्र रूप एक आकाश प्रदेश को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो एक आकाश प्रदेश को हमने नो कर्म क्षेत्र जघन्य कहा था और ज्ञानावरणीय के लिए वो कर्म क्षेत्र जघन्य कहा था, यानी तद व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य जघन के दो भेद दिए थे हमने, ओघ जघन्य आदेश। ये ओघ में भी दो प्रकार देखे थे, यानी उसमें ओग में भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव की बात की थी, उसमें भी क्षेत्र जघन्य लिया था और क्षेत्र जघन्य में कर्म क्षेत्र जघन्य लिया था, उसकी बात है यहाँ पर। यानी उसका पूरा नाम क्या होगा, कर्म क्षेत्र जघन्य में तद व्यतिरिक्त नुआगम द्रव्य जघन्य, कर्म क्षेत्र वाला बात है ना, ओ वाली बात है, ओ जघन्य क्षेत्र आता है, कर्म क्षेत्र ब्रैकेट में
तद व्यतिरिक्त नुआगम क्षेत्र, इसे लेना पड़ेगा ना,
कर्म क्षेत्र जघन्य में ओग जघन्य है ना वो,
हाँ।
ओग जघन्य ब्रैकेट में डालना, ओग जघन्य यानी उसका नाम कैसा होगा, कर्म क्षेत्र तद व्यतिरिक्त
नौगम, भाव लेना पड़ेगा ना यहाँ से,
भाव नहीं द्रव्य है, तद व्यतिरिक्त नौगम द्रव्य जघन्य, देखो देखो ऐसा हम द्रव्य निक्षेप की बात है यानी द्रव्य जघन्य, अब द्रव्य जघन्य में कौन सा भेद है तो तद व्यतिरिक्त वाला है, तद व्यतिरिक्त में कौन सा लिया है तो ओग वाला लिया, यानी ऐसा लेंगे हम उल्टा उल्टा करते हैं ना, वो जघन्य वो द्रव्य निक्षेप है तो द्रव्य जघन्य कहेंगे, उसमें आगम है क्या नो आगम है तो नो आगम है, नो आगम में भी कौन सा है तो तद व्यतिरिक्त है, तद व्यतिरिक्त में भी कौन सा है तो ओग तद व्यतिरिक्त है, आदेश नहीं है, ओग तद व्यतिरिक्त में भी कौन सा है क्षेत्र की बात बात, और वो भी कौन सा क्षेत्र लिया तो कर्म क्षेत्र लिया, तो ऐसा पूरा नाम ऐसा हो गया, कर्म क्षेत्र ओग तद व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य जघन्य, अभी आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर के पृष्ठ पर सेकंड लाइन लेना, यहाँ सर्व जघन्य क्षेत्र रूप एक आकाश प्रदेश को नहीं लेना चाहिए क्योंकि अपना विषय क्या था, वेदना संबंधी, क्योंकि ज्ञानावरणीय के क्षेत्रों में उसका अभाव है, उसका यानी सर्व जघन्य क्षेत्र का, यानी ज्ञानावरणीय की वेदना कभी एक प्रदेश व्यापेगी नहीं, क्योंकि जीव की जघन्य अवगाहना है वो तो निगोद की है, उतना प्रदेश तो व्यापेगा ही व्यापेगा, कभी जीव एक प्रदेश ही होकर नहीं रहेगा, ये कहना चाहते हैं। अब उत्कृष्ट नाम, पहले जघन्य की बात हो गई, अब उत्कृष्ट की बात कर रहे, दे सूत्र ने 6 में क्या देखा था, जघन्य पद और उत्कृष्ट पद, तो जघन्य पद सब जघन्य पर ये सभी निक्षेप लगाए, अभी उत्कृष्ट पर निक्षेप लगाएंगे, तो उत्कृष्ट जो है अभी यहाँ 4 निक्षेप लगाएंगे, नाम उत्कृष्ट, उत्कृष्ट नाम रख सकते हैं ना, उत्तम भी नाम आता है, उत्कृष्ट भी रख सकते हैं क्यों, स्थापना उत्कृष्ट, द्रव्य उत्कृष्ट और भाव उत्कृष्ट के भेद से 4 प्रकार है, यानी 4 निक्षेप लगाए हमने उत्कृष्ट पर, उनमें नाम उत्कृष्ट और स्थापना उत्कृष्ट सुगम है। अब द्रव्य उत्कृष्ट यानी द्रव्य निक्षेप लगा रहे, जैसे हमने जघन्य पर लगाए हैं, इसमें लगाएंगे, उसमें भी आगम और नो आगम पहले 2 भेद करेंगे, अभी जैसे हमने जघन्य में किए थे, तो द्रव्य उत्कृष्ट, आगम द्रव्य उत्कृष्ट और नो आगम द्रव्य उत्कृष्ट के भेद से 2 प्रकार का है, उनमें आगम किसको कहेंगे, जानने वाले जीव को उसमें उपयोग नहीं है, उनमें उत्कृष्ट प्रावृत का जानकार उपयोग रहित जीव आगम द्रव्य उत्कृष्ट है। अब नो आगम द्रव्य उत्कृष्ट, अभी उसमें उस जानने वाले जीव का शरीर को लेना, गया एक शरीर, भावी यानी वो जीव अभी नहीं जान रहा है, भविष्य में जानेगा, और तद व्यतिरिक्त यानी जो शरीर भी नहीं जीव भी नहीं उनके अलावा अन्य जो कुछ है वो आगम नो आगम द्रव्य उत्कृष्ट के भेद से 3 प्रकार का है। इनमें ज्ञायक शरीर और भावी नो आगम द्रव्य उत्कृष्ट सुगम है। अब तद व्यतिरिक्त में वो शरीर भी नहीं जीव भी नहीं ऐसा कौन है उसको यहाँ लेना, तो तद व्यतिरिक्त नो अगम द्रव्य उत्कृष्ट दो प्रकार का है। जैसे जघन्य के भेद की ऐसे यहाँ पर भी है, ओघ उत्कृष्ट और आदेश उत्कृष्ट। इनमें ओघ उत्कृष्ट द्रव्य क्षेत्र काल और भाव की अपेक्षा चार प्रकार है। उनमें द्रव्य से उत्कृष्ट महास्कंद है, क्षेत्र की अपेक्षा उत्कृष्ट दो प्रकार का है, कर्म क्षेत्र और नो कर्म क्षेत्र। लोकाकाश कर्म क्षेत्र उत्कृष्ट है। देखो महास्कंद में परमाणुओं की संख्या अनंत अनंत है, क्योंकि महास्कंद वो एक स्कंद है जो पूर्ण लोकाकाश प्रमाण एक ही स्कंद है, तो उसमें कितने परमाणु हो गए, सबसे बड़ा है वो, इसलिए उसको द्रव्य में उसको लेना है। क्षेत्र में कर्म क्षेत्र और नोकर्म क्षेत्र। लोकाकाश कर्म क्षेत्र उत्कृष्ट है, आकाश द्रव्य नोकर्म क्षेत्र उत्कृष्ट है, अनंत लोक काल से उत्कृष्ट है और भाव से उत्कृष्ट। सर्वोत्कृष्ट वर्ण गंध रस और स्पर्श है। ये सर्वोत्कृष्ट में उनके वो अविभाग प्रतिच्छेद ही लेना पड़ेगा, जैसे मैं पहले भी कहा था ना, ऐसा ही लेना। उसमें भाव में उस परिणत गुण लेना, उस पर्याय से परिणत गुण ही लेना है इसमें। हाँ, क्योंकि हमने देखा ना स्निग्ध ये गुण होगा, स्निग्धत्व उसके परिणत पर्याय होगी। अब आदेश उत्कृष्ट देते हैं। ओग में समझ में आई ना बात। आदेश उत्कृष्ट भी द्रव्य क्षेत्र काल और भाव की अपेक्षा चार प्रकार का है। इनमें अभी कंपेरेटिव देखा था हमने, एक परमाणु को देखकर दो प्रदेश वाला स्कंध द्रव्य से आदेश उत्कृष्ट है, दो प्रदेश वाले स्कंध को देखकर तीन प्रदेश वाला स्कंध भी आदेश उत्कृष्ट है, इसी प्रकार शेष स्कंधों में भी ले जाना चाहिए। इन्हें वो दो स्कंधों में कंपेयर करना है। क्षेत्र की अपेक्षा, अभी क्षेत्र की अपेक्षा कंपेयर करेंगे। एक क्षेत्र प्रदेश को देखकर दो क्षेत्र प्रदेश आदेश की अपेक्षा उत्कृष्ट क्षेत्र है, इसी प्रकार शेष प्रदेशों में भी ले जाना चाहिए। काल की अपेक्षा एक समय को देखकर दो समय आदेश उत्कृष्ट है, इसी प्रकार शेष समयों में भी ले जाना चाहिए। भाव की अपेक्षा एक गुणयुक्त द्रव्य को देखकर दो गुणयुक्त द्रव्य आदेश उत्कृष्ट है, इसी प्रकार शेष गुणों में भी ले जाना चाहिए। ये जैसे जघन्य में देखा वैसे यहाँ पर पूरा ही उत्कृष्ट में लगाना है। भाव उत्कृष्ट यानी भाव निक्षेप लेना। आगम भाव उत्कृष्ट और नो आगम भाव उत्कृष्ट भेद से दो प्रकार का है। अभी भाव में कैसे लगाते हैं हम आगम, उनमें उत्कृष्ट प्रावृत का जानकार उपयोग युक्त जीव भाव आगम भाव उत्कृष्ट है और नो आगम भाव उत्कृष्ट केवल ज्ञान है। यहाँ ओघ क्षेत्र उत्कृष्ट का अधिकार है। हम ये सब चर्चा की उसमें कौन सा लेना है, अपना विषय कौन सा है, तो कहते ओघ क्षेत्र उत्कृष्ट, क्योंकि विवक्षित कर्म क्षेत्रों में उत्कृष्ट क्षेत्र का ग्रहण किया गया है। शंकाकार पूछते हैं, ओघ उत्कृष्ट आकाश द्रव्य है, उसका ग्रहण क्यों नहीं किया? उसका समाधान नहीं, क्योंकि कर्म क्षेत्रों में आकाश द्रव्य का अभाव है। यहाँ कर्म की क्षेत्र की बात चल रही है, उसमें आकाश का क्षेत्र नहीं लेना है, क्योंकि अपना विषय ही जो वेदना अधिकार समझ में आ रहा है। अब एक स्वामित्व जघन्य पद में और दूसरा एक उत्कृष्ट पद में, इस प्रकार से दो प्रकार का ही स्वामित्व है, क्योंकि इनके अतिरिक्त अन्य स्वामित्व की संभावना नहीं है। इन स्वामी तो बताएंगे जघन्य कर उत्कृष्ट, बाकी सब जो विकल्प इन बिटवीन तो हो सकते हैं। अब 7 नंबर का सूत्र पढ़ेंगे। सामित्तेन उक्कस पदे नानावर्णीय वेण खेतदो उक्कस्या कस, यानी वो क्षेत्र से उत्कृष्ट होते हैं वगैरह वगैरह सब बता दिया, पर किसके होते हैं कब होता है वो अभी यहाँ बताएंगे। तो स्वामित्व से उत्कृष्ट पद में ज्ञानावरणीय वेदना क्षेत्र की अपेक्षा उत्कृष्ट किसके होती है, यहाँ कहते उत्कृष्ट पूछा ना, जघन्य की बात नहीं कर रहे। तो जघन्य पद के प्रतिषेध के लिए यानी उसका निषेध करने के लिए यानी उसकी बात अभी विवक्षित नहीं है, सूत्र में उत्कृष्ट पद का निर्देश किया है। ज्ञानावरण का ग्रहण, ग्रहण यानी जानना, शेष कर्मों का प्रतिषेध करता है, इसलिए ज्ञानावरण शब्द वहां जोड़ दिया। वहां यानी अन्य कर्मों की बात अब नहीं हो रही है, वो बाद में बताएंगे ज्ञानावरण के समान अन्य है, अभी तो ज्ञानावरण पर लगा रहे हैं। क्षेत्र पद के ग्रहण का फल द्रव्य आदि का प्रतिषेध करना है, क्योंकि क्षेत्र की अपेक्षा उत्कृष्ट किसके ये पूछा था, क्योंकि द्रव्य की अपेक्षा उत्कृष्ट हमने देखा था 10वीं पुस्तक में, याद है क्या?
गुणित कर्म,
हाँ वो गुणित कर्मांशी को नरक के अंतिम, हाँ नरक की जो संकलेश वाला, उसके लिए जो जो कोई हमने जो कर्म स्थिति के शुरुआत से जो जो हुआ वो सब दिया था उसके अंदर, यानी यहाँ क्षेत्र की बात है अन्य किसी की नहीं। शंका, पूर्वानुपूर्वी को छोड़कर पश्चातानुपूर्वी से उत्कृष्ट क्षेत्र की प्ररूपना किस लिए की जाती है? ये पूर्वानुपूर्वी पश्चातानुपूर्वी ये मालूम है क्या होता है? अनुपूर्वी किसको कहेंगे? जैसे हमें 24 तीर्थंकर का नाम लेना है, तो पूर्वानुपूर्वी किसको कहते हैं? 1, 2, 3, 4 क्रम से लेना होगा पूर्वानुपूर्वी। अब 24 से लेकर 1 तक उल्टे क्रम से कहेंगे तो पश्चातानुपूर्वी, और बीच में किसी का भी नाम लिखते हैं, हम शांतिनाथ का लेंगे, महावीर का लेंगे, कोई भी वासु पूज्य का लेंगे, वो यथा तथानुपूर्वी या यत्र तत्रानुपूर्वी कहते हैं उसको। उल्टे क्रम से नहीं, नहीं उल्टे क्रम से कहना। देखो ये कथन में आता है, कथन शुरू पहले दूसरे तीसरे ऐसा कथन करेंगे तो क्या पूर्वानुपूर्वी, और उल्टे क्रम से कहना वो पश्चातानुपूर्वी। कहीं कोई भी विषय है उल्टे क्रम, हम ये याद करने के लिए पहाड़े हम 2 अंजा 2, 2 जा 2, अभी उल्टे क्रम से कहो तो 2 टेंजा से शुरू करके 2 अंजा तक आना वो है पश्चातानुपूर्वी। हमने कहीं से भी पूछा आपको 2 सेवंजा कितना होता है, वो क्या होगा? यथा तथानुपूर्वी, क्रम रहित। ऐसे कहने के पद्धति 3 प्रकार से होती है, इसलिए क्या आप कहते समय बताए जघन्य और उत्कृष्ट 2 पद होते हैं। अब कहते उत्कृष्ट का पहले कथन क्यों किया पश्चातानुपूर्वी से, ख्याल में उनका प्रश्न क्या है? भेद करते समय जघन्य और उत्कृष्ट ऐसा कह दिया, अब जब स्वामित्व बताना है तो उत्कृष्ट की बात पहले उठाई, इसलिए शंकाकार ने क्या पूछा कि पूर्वानुपूर्वी को छोड़कर, हमें तो शब्दों का अर्थ समझ में आना चाहिए, पश्चातानुपूर्वी से उत्कृष्ट क्षेत्र की प्ररूपणा ने वो कथन किस लिए की जाती है? तो कहते समाधान, नहीं महान परिपाटी से प्ररूपणा करने के लिए, महान ने वो बड़े से शुरू करना है, उत्कृष्ट से शुरू करना है, महान ने वो बहुत बड़ा ऐसा नहीं है, महान ने बड़ा करने के लिए पश्चातानुपूर्वी से प्ररूपणा की जा रही है, अर्थात उद्देश्य के अनुसार। यद्यपि पहले जघन्य पद की प्ररूपणा करना चाहिए थी, क्योंकि हमने पहले बताया था 2 पद होते हैं जघन्य और उत्कृष्ट, तो पहले जघन्य की करना चाहिए थी, तथापि विस्तृत होने से यानी बड़ा होने से पहले उत्कृष्ट पद की प्ररूपणा की जा रही है। अब वो बताएंगे किसके होता है, पहले तो प्रश्न पूछा गया था किसके है, अब ये उत्तर में बताएंगे किसके होती है। जो मच्छो जोयण सहस्यो स्वयंभू रमण समुद्दस बाहिरिल्लय तड़े अच्छिदो, अभी एक एक सूत्र में उसके एक एक कंडीशन बताएंगे। जो मत्स्य 1000 योजन की अवगाहना वाला, ये तो उसकी ऐसी लंबाई ली आड़ा, स्वयंभू रमण समुद्र के बाह्य तट पर स्थित है, एक एक सूत्र में एक एक कंडीशन बताते बताते पूरा करेंगे। पहले में पहले जो मत्स्य 1000 योजन की अवगाहना वाला है, इस सूत्रांश से जो मत्स्य अंगुल के असंख्यातवे भाग को आदि लेकर उत्कर्ष से 1 प्रदेश कम 1000 योजन प्रमाण तक आयाम से स्थित हैं, उनका प्रतिषेद किया गया। यानी मत्स्यों की अवगाहना कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, तो कहते कि अंगुल के असंख्यातवे भाग से लेकर, वो तंदुर मत्स्य वगैरह या हमारे यहाँ के मत्स्य कितने छोटे छोटे, एकदम बिल्कुल इतने छोटे भी हो सकते हैं और इतनी बड़ी अवगाहना वाले। जैसे हमने अवगाहना के भेद देखे थे ना, उसमें मिनिमम अवगाहना और मैक्सिमम अवगाहना देखी थी, तो बाकी सब अवगाहना का निषेध करना है, मैक्सिमम अवगाहना वाला जीव लेना है। वो 1000 योजन ऐसा है और 500 योजन आड़ा है और 250 योजन ऐसा है। शंका, उच्छेद और विष्कंभ की अपेक्षा महामत्स्य के सदृश पाए जाने वाले मत्स्यों का ग्रहण करने पर भी कोई दोष नहीं है, अतः उनका ग्रहण क्यों नहीं करते? क्या कहना चाहते हैं? ये लंबाई 1000 ली, परंतु उच्छेद और विष्कंभ यानी 500 योजन और 250 योजन, यहाँ क्या कहना, 500 और 250 जो है वही तिगुना होने वाला है। हाइट वाइज 1000 योजन का तिगुना नहीं होता, हाइट वाइज नहीं बढ़ता है। हाइट यानी उसकी लंबाई लेना है ना, और जब वो ऐसा गमन करेगा तो उसके जो इससे आना जो फैलेगा तिगुना, इस तरह से उसका मारणांतिक होगा। 1000 में कोई फर्क नहीं है, जो 1000 है वो तो वहां जाने में लंबाई में ही गिनेंगे। तो इनका यही कहना है, 1000 योजन के बदले मान लेते हैं ना 999 योजन वाला है, और उसके जो 500 और 250 उतनी है उसको भी यहाँ लेना पड़ेगा। ये शंकाकार की शंका है, समझ में आई ना? क्योंकि 1000 योजन हो या 900 योजन हो, जाते समय जो उसका मारणांतिक में गमन है उसमें कोई डिफरेंस नहीं पड़ने वाला। डिफरेंस कैसे, चौड़ाई में अगर डिफरेंस हो तो डिफरेंस होगा, इसलिए ये प्रश्न है। फिर से देखो, शंकाकार ने क्या पूछा, उच्छेद और विष्कंभ की अपेक्षा महामत्स्य के सदृश पाए जाने वाले मत्स्यों का ग्रहण करने पर भी कोई दोष नहीं है, अतः उनका ग्रहण क्यों नहीं करते, ये उन्होंने प्रश्न पूछा। तो कहते यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि जब तक महामत्स्य के आयाम विष्कंभ और उच्छेद का परिज्ञान न हो जावे, तब तक प्राप्त मत्स्यों के आयाम विष्कंभ और उच्छेद का परिज्ञान होना किसी प्रकार से संभव नहीं है। यानी हमें उसके आयाम भी, विष्कंभ भी और उच्छेद भी, उच्छेद यानी हाइट, विष्कंभ यानी चौड़ाई और आयाम यानी अभी लंबाई, तो हमें तीनों ही उसके डायमेंशन मालूम होना चाहिए। महामत्स्य का आयाम किसी अन्य सूत्र से नहीं जाना जाता है, क्योंकि इस सूत्र से ज्येष्ठ प्राचीन सूत्रभूत कोई अन्य वाक्य संभव नहीं है। यानी ये सबसे प्राचीन सूत्र है महामत्स्य के अवगाहना संबंधी। महामत्स्य तो हमेशा होंगे, वो तो स्वयं रमण समुद्र में। महामत्स्य का आयाम 1000 योजन प्रमाण, देखो हमारे जो समुद्र हमें मालूम है वो तो सारा लवण समुद्र है ना, अमेरिका वाला लवण समुद्र है कि कोई अन्य दूसरा है, पैसिफिक समुद्र लवण समुद्र है कि कोई अन्य है, अरे पानी तो सबका खारा है ना, उसी देखो देखो बहुत छोटा पार्ट है, क्योंकि ये सारे खारे पानी वाले है कि नहीं है, आगे के कोई समुद्र खारा पानी वाले नहीं है। वो कौन से समुद्र का कौन से टेस्ट है वो सब है, शास्त्र में लिखा हुआ है सारा। उसका नाम ही लवण समुद्र है ना, लवण समझते हैं, नमक, नमक वाला। देखो महामत्स्य का आयाम 1000 योजन प्रमाण है। देखो जब शरीर की अवगाहन है वो ऑर्डिनरी योजन होती है, और जहाँ समुद्र की गहराई हो या कोई द्वीप और समुद्र को हमको गिनना है वो महायोजन में होता है। तो कहते महामत्स्य का आयाम 1000 योजन प्रमाण है, क्योंकि ऐसा देखेंगे तो स्वयं रमण समुद्र की डेप्थ ही 1000 योजन है, परंतु वो महायोजन है ऑर्डिनरी है, ये ऑर्डिनरी योजन है। हाँ, इसके विषकंभ और उच्छेद का प्रमाण कितना है ऐसा पूछने पर उत्तर देते हैं, उस महामत्स्य का विषकंभ 500 योजन और उच्छेद 250 योजन मात्र होता है। यानी मछली कैसे होती है, ये विषकंभ ने अड़ाई वो उसकी चौड़ाई ज्यादा है ना, इसे वो 500 योजन, विषकंभ ने हाइट वाइज वो 250 योजन होता है। विषकंभ ने चौड़ाई मुझे कहना आड़ा विड्थ, और हाइट उच्छेद है वो 250 है ऊंचाई हाइट कहेंगे। शंका, यह सूत्र के बिना कैसे जाना जाता है, तो सूत्र में केवल हजार की बात की तो ये बाकी कैसे अपने जाने है? तो कहते हैं वह आचार्य परंपरा के प्रवाह स्वरूप से आए हुए उपदेश से जाना जाता है। कितने सूत्र है, कितने उसका जो स्पष्टीकरण है वो आचार्यों ने क्रम से आचार्यों से आचार्य ऐसे जिसका प्रवाह क्रम से हमारे तक आया हुआ है। और महामत्स्य के विषकंभ व उच्छेद का ज्ञापक सूत्र है ही नहीं, ऐसा नियम भी नहीं है, क्योंकि जोयन सहस्योत्ति अर्थात 1000 योजन वाला इस देशामर्शक सूत्र वचन से उनकी सूचना की गई है। यानी वो देशामर्शक उसकी केवल 1000 बताया है, बाकी 2 डायमेंशन उसमें हम डिराइव कर सकते हैं, तो ये सूत्र में ही बताया गया, इसे समझ सकते हैं इसको। ये विषकंभ और उच्छेद महामत्स्य के सब जगह समान है। मुख और पूंछ में विषकंभ एवं उच्छेद का प्रमाण इतने मात्र ही है, क्योंकि इनसे भिन्न विषकंभ और उच्छेद की प्ररूपना करने वाला सूत्र व व्याख्यान पाया नहीं जाता, तथा इसके बिना 1000 योजन का निर्देश बनता भी नहीं है। यानी जहां उसकी 1000 योजन लंबाई होगी वहां इतना ही उच्छेद इतना ही विषकंभ है। महामत्स्य मुख और पूंछ में अतिशय सूक्ष्म है ऐसा कितने ही आचार्य कहते हैं, किंतु यहाँ के मत्स्यों को देखकर यह घटित नहीं होता, तथा कहीं कहीं मत्स्यों के अंगों में व्यभिचार देखा जाता है। क्या कहना चाहते हैं, मछली का जो आकार है वो कहते आगे स्मॉल है, फिर बड़ा हो जाता है, फिर नीचे पूंछ की तरफ कम होता है, परंतु यहाँ के कई कई मछलियां ऐसे भी होते हैं ना कि वो तो सामने भी बहुत ब्रॉड होता है, आपने देखे होंगे वो हथौड़े जैसे समूह कुछ अलग होता है उसका, तो ये अलग अलग आकार के मछली हो सकती है, तो यहाँ वो समान वाला लिया है यहाँ जीव, यानी वो टेपरिंग होता है ना, बहुत छोटा हो जाता है इस तरह से, पर ये जरूरी नहीं है। अथवा ये विषकंभ और उच्छेद समकरण सिद्ध है ऐसा कितने ही आचार्य कहते हैं। ये समकरण सिद्ध है ना, हम उसका एवरेज निकाल सकते हैं, इसको समकरण सिद्ध कहेंगे, क्योंकि हमने लोकाकाश के डायमेंशन देखे थे कैसा है, ऊपर एक राजू, फिर 5 राजू, फिर 1 राजू, फिर 7 राजू, उसका समकरण करेंगे तो क्या कहेंगे, 7 राजू गुना 7 राजू गुना 7 राजू, इस तरह उसको समकरण भी कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अतिशय सूक्ष्म मुख से संयुक्त महामत्स्य अनेक योजन की अवगाहना वाले अन्य तिमिंगल आदि मत्स्यों के निगलने में समर्थ नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें विरोध आता है। क्या कहते हैं, अगर महामत्स्य का मुंह भी अति सूक्ष्म मानेंगे, उसके जो उसकी जो अवगाहना है उसके उसके प्रपोर्शन में होगा ना, अति सूक्ष्म तो नहीं हो सकता। कोई भी मछली है, छोटी मछली का आकार उसका मुंह उसके प्रपोर्शन में होगा, और बड़े बड़े मच्छों का आकार उसके भी, जो वो हम देखते हैं ना इसे जॉ इसे जबड़ा खोल दिया, तो कहते वो जो अन्य जो तिमिंगल वगैरह जो उन्होंने बताए थे मत्स्य, यानी जो बहुत बड़े मत्स्य है वो छोटी मछली है उनकी अपेक्षा छोटी है, परंतु वो भी बड़े बड़े मछली होगी ना जो उनको निगलते हैं, तो मुख तो इतना बड़ा होना चाहिए कि जो अन्य मछलियों को निगल सके, यानी इतना तो बड़ा होगा ही होगा, ये कहना चाहते हैं। अतएव व्याख्यान में महामत्स्य के उपर्युक्त विषकंभ और उच्छेद का ही वो ही बराबर छपा नहीं है ग्रहण करना चाहिए, अथवा यानी अन्य अन्य पॉसिबिलिटीज बता रहे। उक्त विष्कम्बर उच्छेद महामत्स्य के मध्य प्रदेश में ही ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि आदि मध्य और अंत में इससे तिगुणे फैलने वाले के उत्कृष्ट क्षेत्र की उत्पत्ति के प्रति कोई विरोध नहीं। क्या कहना चाहते हैं? ये भले मुख की और पूंछ की तरफ हो, टेपरिंग हो गए अंत में, फिर भी जब तिगुणी अवगाहना होती है तो जहां मैक्सिमम उससे तिगुणा तक फैला है, कि जहां तिगुणे हो जाते बड़ी उतने अवगाहना वाले प्रदेश चले जाएंगे वहां पर नरक तक, इसलिए कहीं पर भी उतने हो जाएंगे तो उसको स्वीकार करना चाहिए। इसलिए अलग अलग पद्धति से वो उसका जो 500 और 250 कैसे हो सकता है उसकी चर्चा की उन्होंने। अब कहते स्वयंभू रमण समुद्रस्य इस पद के द्वारा द्वीप समुद्रों में सबसे बाह्य समुद्र का ग्रहण किया गया है। शंकाकार पूछते हैं सर्व बाह्य समुद्र ही ऐसे कैसे जाना जाता है? क्या कहा? एक द्वीप एक समुद्र, एक द्वीप समुद्र, सबसे लास्ट में समुद्र ही ऐसा आपने कैसे जाना, ये प्रश्न पूछ रहे हैं। समाधान, स्वयंभू रमण समुद्र के बाह्य द्वीप में स्थित ऐसा न कहकर, वो ऐसा बराबर करो, स्वयंभू रमण समुद्र के बाह्य तट पर स्थित ऐसा जो सूत्र है उसी से वह जाना जाता है। अपनी बाह्य वेदिका पर्यंत स्वयंभू रमण समुद्र है, उसी के बाह्य तट से अभिप्राय समुद्र के पर भूभाग प्रदेश का है, वहां पर स्थित ऐसा ग्रहण करना चाहिए। यानी उसके स्वयं उसका भी किनारा होगा ना, वहां पर भी कोई भूभाग होगा, जमीन होगी। स्वयंभू रमण समुद्र के बाह्य तट का अर्थ उसकी अंगभूत बाह्य वेदिका है, वहां स्थित महामत्स्य ऐसा कितने ही आचार्य कहते हैं किंतु वह घटित नहीं होता, क्योंकि वैसा स्वीकार करने पर आगे कहे जाने वाले तनुवात वलय से संलग्न हुआ इस सूत्र के साथ विरोध आता है। क्योंकि हमने देखा था यहाँ पर वो मध्यलोक में ना एक द्वीप एक समुद्र करते करते अंतिम स्वयंभू रमण समुद्र है, उसका किनारा है, और वहां जो महामत्स्य गिरता है और उसके आगे बताने वाले हैं, उसके बाहर रहने लोकाकाश के सेंटर में मध्यलोक में अंतिम जो है वो वात वलय है। तीन वात वलय है, जैसे हम कहते हैं ऊपर और नीचे भी वात वलय होते हैं, तो वहां के वात वलयों की डायमेंशन कितनी होती है? 5-4-3, जैसे 7-5-4 से यहाँ शुरू हुआ था, सबसे नीचे तो 20-20 हजार योजन थे, ऐसे भी एक राज्य तक 20-20 हजार थे, फिर वहां 7, 5 और 4 हो जाते और वो टेपरिंग होते होते साइड में मध्य लोक के यानी मध्य स्वयंभू रमण के बाहरी भाग, वहां 5, 4 और 3 योजन ऐसा रह जाता है। तो आगे जो सूत्र है उसकी वो ये बातें बताने वाले हैं, उसकी बात आएगी अभी। तो आगे वो कहने वाले हैं कि तनुवात वाले से संलग्न हुआ, यानी वहां तक उसने टच किया है, क्योंकि वो पूरा आड़ा एक राजू तक उसको ले जाना है ना, और फिर बाद में नीचे भेजना है, इसलिए कारण कि स्वयं रमण समुद्र की बाह्य वेदिका से तीनों ही वात वलय वातावलय ने वात वलय संबद्ध नहीं है, क्योंकि वैसा होने पर तिर्यक लोक संबंधी विस्तार प्रमाण के एक राजू से हीन होने का प्रसंग आता है। शंका, वह कैसे जाना जाता है? यानी पूरा तिर्यक लोक कितना एक राजो विस्तार वाला है, वो वात वाले जो कुछ है वो तो उसे उसी एक राजो में ही सब इंक्लूडेड है, ये कहना चाहते हैं। समाधान, चूंकि जम्बू द्वीप संबंधी 1,00,000 योजन प्रमाण विस्तार की अपेक्षा दुगुने क्रम से गए हुए सब द्वीप समुद्रों के विस्तारों को मिलाने पर जगत श्रेणी का 7वां भाग उत्पन्न नहीं होता, अतः इसी से जाना जाता है कि तीनों वात वलय स्वयंभू रमण समुद्र की बाह्य वेदिका से संबद्ध नहीं है।
24 जन कम हो जाएगा ना।
जगत श्रेणी का सातवां भाग है एक राजू।
हाँ, एक राजू में 24 जन कम हो जाएगा, 5 4 3 है तो 12 और 12 दोनों साइड पे।
नहीं, वो तीनों वात वाले स्वयंभू रमण समुद्र के बाह्य वेदिका से संबद्ध नहीं है कहते हैं, क्योंकि वो राजू उत्पन्न नहीं होता और भी कुछ रह जाता है, वो सबको मिलने मिलाने पर राजू हो जाएगा। समाधान, हाँ सब मिलकर एक राजू होगा, यानी स्वयं रमण समुद्र उसके तट और उसके वात वाले सब मिलकर
एक
राजू होगा। तो ये शंकाकार पूछते कैसे जाना है, तो कहते एक अधिक द्वीप समुद्र संबंधी रूपों का विरलन कर दुगुणा करके परस्पर गुणित करने पर जो प्राप्त हो उसमें तीन रूपों को कम करके 100,000 योजन से दुगुणित करने पर द्वीप समुद्रों द्वारा रोके गए तिर्यक लोक क्षेत्र का आयाम उत्पन्न होता है, अतः इसी से जाना जाता है उक्त प्रकार से जगत श्रेणी का सातवां भाग उत्पन्न नहीं होता, यानी एक राज्य उत्पन्न नहीं होता है कहते। क्या कहना चाहते फिर से? वो लाख योजन है ना उसका, देखो यहाँ क्या कहते हैं,
100,000 दुगुना दुगुना होता है ना,
एक अधिक द्वीप समुद्र संबंधी रूपों का विरलन कर। अभी हम एक जम्बू द्वीप, दूसरा लवण समुद्र, तीसरा है कालो नहीं नातकी खंड, कालोदधी समुद्र और पुष्करवर। अभी जाने दो, पुष्कर को छोड़ो, कालोदक समुद्र तक अभी चार लिए ना, 1 2 3 4, यानी दो समुद्र है ना, एक लवण समुद्र है कालोदधी समुद्र, और ये उनका फॉर्मूला वहां फिट करके देखते हैं। तो जम्बूद्वीप है 1,00,000 वाला, फिर ये
2,00,000 समुद्र, 2,00,000
दोनों ओर
4,00,000,
फिर 4,00,000 दोनों ओर
8,00,000,
फिर 8,00,000 दोनों ओर। तो कितना हुआ, 8 × 4 = 12 × 2 = 14, 14.5 = 29, 29,00,000 योजन हो जाएगा। यहाँ क्या कहते हैं, एक अधिक द्वीप समुद्र संबंधी रूपों का विरलन कर, यानी हमारे यहाँ
हमने चार लिए,
चार है तो 5 का करना पड़ेगा, 5 का विरलन कर,
100,000 से गुणित कर,
दुगुणा कर परस्पर गुणित करना, 5 बार 2 गुणा करेंगे, 2 2 2 तो 32 हो जाता है, जो प्राप्त हो 32 में से 3 कम करो, 29 आए ना। हमने आपको फॉर्मूला बताया, कहीं पर भी ये फॉर्मूला फिट करो, कितने भी द्वीप समुद्र गिनने हैं तो उसमें यही है कि जितने हैं ना द्वीप समुद्र मिलकर, तो पहला जम्मू, अभी हमने चौथे समुद्र तक देखा, तो टोटल उसकी 29,00,000 योजन हम काउंट कर सकते हैं, 1 + 2 + 2 + 4 + 4 + 8 + 8, तो उनके फॉर्मूला में फिट किए। कैसे करना है, 4 है ना हमारे पास,
5 का विरलन
द्वीप समुद्र, तो 5 का विरलन करो, विरलन करने ने 1 1 1 1 डिवाइड करके लिखो, हर एक के ऊपर 2 2 2 2 लिखकर आपस में गुणा करो, यानी दो संख्या 5 बार लिखकर गुणा करो तो 32 आते हैं, तो उसमें से 3 माइनस करो तो 29। ये बताए ना, देखो फिर से पढ़ती है, समाधान, एक अधिक द्वीप समुद्र संबंधी रूपों का विरलन कर, यानी फॉर एग्जाम्पल हमने 4 देखे ना, द्वीप और समुद्र 4 लिए तो उसके 5 हो गए, तो 5 का विरलन किया हमने, उसको दुगुणा किया और परस्पर गुणित किया तो 32 आया, तो जो हो उसमें 3 रूपों को कम करना, तो 32 में से हमने 3 कम कर दिए तो 29 आ गए,
और 1,00,000 से गुणित,
उसको लाख से गुणित करो, इनटू लाख, ये फॉर्मूला हुआ। द्वीप समुद्रों द्वारा रोके गए तिर्यक लोक क्षेत्र का आयाम उत्पन्न होता है, कहीं पर भी हमको लेना है द्वीप समुद्र, 8वां नंदीश्वर द्वीप है तो 8वें तक कितने द्वीप समुद्र हो गए, 15 हो गए ना, 7 समुद्र 7 द्वीप और ये 15वां, तो 15 बार 2 लिखकर आपस में गुणा करो, वहां तक का पूरा टोटल क्षेत्र निकालना है तो हाँ उसमें करना ना 15 + 1 16 16 बार लिखकर आपस में गुणा करो दो 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 तो कितना आ जाएगा पनट्टी प्रमाण आ जाएगा
उसमें 3 माइनस करो
हाँ, उसमें से 3 माइनस करो
और उसको
65,536 में से 3 माइनस करो
उसको 1 लाख
उसको लाख करो लाख गुणा करो ना उतने लाख योजन हो जाएगा पूरा क्षेत्र यानी पूरा एरिया यानी डायमीटर उसका नहीं है क्यों उससे भी ज्यादा होगा वो उससे कम है ये तो उसने गुणित करने पर द्वीप समुद्र द्वारा लोके गए तिरियल क्षेत्र का आयाम उत्पन्न होता है अतः इसी से जाना जाता है कि उक्त प्रकार से जगत श्रेणी का सातवां भाग नहीं उत्पन्न होता क्योंकि उसके बाहर अभी उससे संबद्ध नहीं इमीडिएट लगा हुआ नहीं है तिरियक लोक का विस्तार इतने मात्र ही हो सो भी नहीं है क्योंकि जगत श्रेणी के सातवें भाग में 5 शून्य नहीं पाए जाते और इससे राजू विष्कम्भ हीन भी नहीं है क्योंकि राजू के अंतर्गत 24 योजन प्रमाण वायु रुद्ध क्षेत्र बाह्य में पाया जाता है ये 24 राजू कहाँ से निकाले 24 योजन 5, 4 और 3 5 और 4, 9, 3, 12 इधर और 12 इधर
24 योजन हो गए
लोकाकाश का ये लोकाकाश है ये लोकाकाश है ये 3 बात वाले है इधर
12 इधर
तो कितने 5 योजन 4 योजन और 3 योजन
12 योजन
यहाँ पर भी 5 योजन 4 योजन और 3 योजन तो 5, 4, 9, 3, 12 इधर 12 इधर तो 12 + 12 = 24 योजन ये वायु रुद्ध क्षेत्र बाह्य में पाया जाता है हा? फिर से तिर्यक लोक का विस्तार इतने मात्र ही हो सो भी नहीं है क्योंकि जगत श्रेणी के सातवें भाग में 5 शून्य नहीं पाए जाते 5 शून्य कहाँ से निकाले हाँ एक राजू यानी वो सातवां भाग है वो स्क्वायर में आएगा ना 7 राजू जिसको जगत श्रेणी कहते हैं वो कौन सी धारा में आता है केवल द्विरूप वर्ग धारा में नहीं आता है द्विरूप घन धारा में आता है और घनाघन में लोक आता है द्विरूप घन धारा में आता है वो कहीं आगे चल जाकर यानी घनांगुल के आगे बहुत सारे स्थान जाने पर वो जगत श्रेणी आने वाली है तो उसमें तो 5 शून्य वगैरह वो नहीं पाए जाते क्योंकि ये यहाँ कहना चाहते कि 1 लाख 2 लाख वगैरह वगैरह करते करते उसकी जो एरिया निकलेगी क्योंकि कितने द्वीप और समुद्र है
25 कोड़ा कोड़ी
उद्धार पल्य उतने बार 2 लिख को आपस में गुणा करो
16 बार
तो जो संख्या आएगी उसमें से 3 माइनस करो यहाँ कहना चाहते वो कुछ और फिगर आएगी उसमें कुछ ये 5 शून्य की बात कहाँ से निकाली वो ख्याल में नहीं आया मुझे भी
हो गया
ये कल फिर यहाँ से लेंगे ना तिरियोलो का विस्तार इतना मात्र नहीं है वहाँ से शुरू से ही लेते हैं कल लेंगे जावानी के ज्ञान से सूझे लो पालो सोवाणी मस्तकनम सदा देत हो लो
नमो यत्तानम नमो सिद्धानम नमो आज्ञानम नमो उद्धानम